शांति। तो प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज का प्रश्न है, संगम युग योगी जो संगम युग है, हाँ संगम युग की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं हो सकती। संगम युग की ऐसी कौन सी विशेषता है जो सारे कल्प में नहीं हो सकती, तो ये प्रश्न है। हाँ तो संगम युग तो सारे विशेषताओं से भरा पड़ा है, संगम युग को वरदान ही है विशेषता होगा। तो पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का, तो यही पर उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हैं पुरुषोत्तम संगम युग में। ये छोटा सा युग होता है, लिप युग भी कहते हैं इसे। और जैसे शास्त्रों में वर्णन है, चार युगों का वर्णन है, लेकिन ये संगम युग का वर्णन गुम है। हाँ तो ये राज तो अभी जब तक बाप नहीं आए और बताए नहीं तब तक खुल नहीं सकता। तो सबसे जो सभी विशेषताओं की जो फाउंडेशन कहेंगे या जननी कहेंगे, परमात्म अवतरण, क्योंकि शिव बाबा जब आएंगे तभी ये सब राज खुलते हैं, विशेषताएं संगम युग को मिलती हैं। तो मेन फाउंडेशन होती है परमात्म अवतरण, तो इससे ही सभी विशेषताएं इस संगम युग को प्राप्त होती है। तो उसमें भी जो कहा गया है कि जो विशेषताएं जो संगम युगी ब्राह्मणों को प्राप्त होती है, तो ये सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चार युग तो है ही, लेकिन ये गुप्त युग पुरुषोत्तम संगम युग में प्राप्त होती है। तो ऐसी संगम युग की महिमा अपरम अपार है, कितने भी महिमा करो होने खत्म नहीं हो सकती। जैसे बाप आते हैं तो बाप की महिमा तो होती है, उसके साथ साथ भारत की महिमा भी होती है, क्योंकि भारत की महिमा होती है तो भारत में जिस भूमि पर आते हैं तीर्थ भूमि, उस भूमि की भी महिमा होती है, तो संगम युग की भी महिमा होती है। तो ऐसे विशिष्टताओं से भरा पड़ा है संगम युग। तो इसमें हम देखेंगे जो आज का प्रश्न है, संगम युग की विशेषताएं जो सारे कल्प में नहीं हो सकती, तो इसका उत्तर में पहली पॉइंट है कि परमात्मा जो बाप है, तो भगवान को जो कहते हैं कि मेरा बाबा, मेरा बाबा कहने का अधिकार ही संगम पर ही प्राप्त होता है। तो मेरा बाबा कहा माना वर्ष के अधिकारी बन जाते हैं, सब एक कोई मेरा बाबा कहते हैं, सभी एक कोई मेरा बाबा कहते हैं, चाहे कहां के भी ब्राह्मण हो, भारत के हो चाहे विदेश के हो, सभी एक कोई मेरा बाबा कहते हैं। इसकी यादगार भक्ति मार्ग में कौन सी है, जो आज का दिन है, हाँ शरद पूर्णिमा। तो महाराज जो मनाते तो हर गोपिकाओं के साथ, हाँ तो श्री कृष्ण उनको अनुभव होता था हर एक के साथ, मेरा ऐसा नहीं होता था कि ये उसका वो उसका नहीं, सभी कहते थे मेरा। तो हम सभी ब्राह्मण आत्माएं उसको मेरा बाबा कहते हैं। तो ये रियल अभी हमने अनुभव किया है, तो इसकी यादगार भक्ति मार्ग में चली आती है। तो ये मेरा बाबा कहने का अधिकार अभी संगम पर ही प्राप्त होता है, और बाप को मेरा बाबा कहने से अपनेपन का अनुभव होता है, और सब मेरा हो जाता है। सब मेरा माना हद का नहीं, हद का मेरा नहीं, वेद का मेरा, सारा संसारी सारे ब्रह्मांड के ही मालिक बन जाते। तो ये वेद के नशे में रहना चाहिए। तो ये पहली उत्तर पॉइंट है जो प्रश्न में है, पहली विशेषता है जो उत्तर में आई है, जो बाप दादा ने दी है। फिर दूसरी विशेषता है नॉलेजफुल बनने की विशेषता, संगम युग पर प्राप्त होती है, क्योंकि ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों को गॉडली स्टूडेंट बना के पढ़ाते हैं। तो ये ज्ञान जो सृष्टि के आदि मध्य का जो ज्ञान है हमें प्राप्त हो जाता है, और कल्प के जो गुह्य राज है, कल्प के जो संगम का गुह्य राज अभी खुलता है इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो यहाँ नॉलेजफुल हम आत्माएं बन जाती है। तो सुबह सुबह ही मुरली क्लास में हम गॉडली स्टूडेंट बन पढ़ते हैं, ज्ञान सागर बाबा टीचर बन के हमें पढ़ाते हैं। तो ये टीचर बनने, भगवान को टीचर बनाने की विशेषता संगम युग पर अभी प्राप्त होती है। फिर तीसरी पॉइंट है वरदानों की प्राप्ति। तो वरदान माना इसमें मेहनत नहीं होती, वरदान माना सब सहज मिल जाता है। तो भक्ति मार्ग में तो दिखाते हैं कि तपस्या करते तभी वरदान प्राप्त होता है, कोई देवी देवता प्रसन्न होते तब वरदान, लेकिन यहां तो जन्म से ही वरदान प्राप्त हो जाते हैं, यहां वरदानों से ही पलते हैं। तो वरदान जैसे रोज का मुरली में वरदान मिलता ही है, जब से हम बाबा के बच्चे बने तो वरदानों से ही पल रहे हैं, और संडे के दिन तो पूरा विशेष वरदानों की बरसात ही हो जाती है अव्यक्त मुरली में, हाँ तो वरदानों से ही पलते। तो सदगुरु बाबा हमें इस संगम पर वरदानों से पालते, और दूसरा क्या है कि नजर से निहाल करते, सदगुरु बाबा नजर से निहाल करते। तो ये तीन विशेषता है, बाप, टीचर और सदगुरु। पहली तो उत्तर में बाबा ने बताई कि मेरा बाबा कहने का अधिकार और फिर नॉलेजफुल बनने का अधिकार और ही वरदानों से प्राप्ति। तो ये तीन मुख्य जो विशेषताएं हैं संगम युग की अभी प्राप्त होती है। फिर चौथी विशेषता है प्रत्यक्ष फल पाने की विशेषता। प्रत्यक्ष फल अभी मिल जाता है, अभी अभी किया और अभी अभी प्राप्त हो जाता है। तो पहली ऐसी कौन सी विशेषता है जो तुरंत मिल जाती है? हाँ, बाप का परिचय दो और खुशी प्राप्त होती है। बाप का परिचय देते ही हमें अनुभव होता है कि कमाई जमा हो रही है, एकदम नशा चढ़ जाता है, तो ये तुरंत हमें प्राप्ति हो जाती है। तो ये चौथी विशेषता है कि प्रत्यक्ष फल। अगर प्रत्यक्ष फल भी तब मिलता है लेकिन जब हमारे संकल्प भी समर्थ हो, संकल्प रूपी बीज अगर समर्थ है तो फल भी उसका समर्थ मिलता है, सफलता प्राप्त होता है। फिर पांचवी विशेषता है कि कुंभ का मेला इसी संगम पर भरता है, हाँ लगता है, हाँ तो कुंभ का मेला और उसको हम कौन सा मेला बोलते हैं? मिलन मेला, बाप दादा से मिलन मेला। अभी जो सीजन चालू हो गई, ऋतु आ गई, मौसम आ गया प्रभु मिलन की, तो ये मिलन मेला अभी संगम पर ही प्राप्त होता है। इस संगम में कोई विशेषता प्राप्त होती है। तो हम जो बाप दादा से मिलन मनाते हैं तो इसी की यादगार भक्ति में चली आती है। और अभी तक भी देवी देवताओं के नाम पर ये मेले लगते हैं। जैसे नवरात्रि में देखो तो जो शक्ति के पीठ है 51 या 52 पीठ जो है, शक्ति पीठ 51 है ना, तो शक्ति पीठ में यहाँ तो इतनी गर्दी होती है कि मतलब बहुत ही, और जितने भी छोटे मोटे जितने भी देवी के मंदिर होती है सब माना भक्तिमय हो जाता है, पूरा भारत में ही ज्यादा पूजा होती है। तो और शिवरात्रि माना बाप की जन्म जयंती पर 12 ज्योतिर्लिंगम जो मुख्य है भारत में वहां तो गर्दी होती है, लेकिन जो छोटे भी मंदिर है शिव मंदिर या पहाड़ पर कोई पत्थर भी रख देते हैं शिव के नाम से वहां भी भक्तों की भीड़ हो जाती है। तो यही यादगार है जो भक्ति में चली जाती है। अभी हम मिलन मेला मनाते हैं और सबसे बड़ा मेला तो कुंभ का जो प्रयागराज में मनाया जाता है 12 वर्ष में एक बार, और जो 6 साल में एक अर्ध कुंभ होता है, छोटा कुंभ होता है वो 6 साल में होता है। तो इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन, तो ये तीन जगह खास बड़े बड़े मिले, बनारस में काशी, तो तीन जगह मुख्य हैं, बाकी होते हैं छोटे कुंभ होते हैं। तो ये इतने यादगार अभी हम बच्चों के मिलन मेला जो हुआ बाप दादा से तो इसकी यादगार बनी हुई है। तो हम भी डायमंड हॉल में देखते थे, इतना रस हो जाता था, कभी 25,000 आ जाते थे तो बैठने के लिए भी जगह नहीं होती थी, तो हमारी सेवा वहां लगती थी 5 नंबर में, तो सभी चाहते थे कि हम आगे बैठे, और सभी का अधिकार था कि मेरा बाबा है, सभी कहे मेरा बाबा है, सभी हम उनको समझाते थे जो भी बाहर लाइन लगती थी कि ये सभी के लिए नहीं है, कुछ रिजर्वेशन रखी जाती है। नहीं बोले हम भी तो बाबा के बच्चे हम काम, हाँ तो सभी की ये चाहना होती कि आगे बैठे तो उस समय वो दरवाजे भी टूट जाते थे, जो कब्जे है ना, इतना रस हो जाता था संभाल नहीं पाते थे। तो उस समय हमें संकल्प आता था कि बाबा इसको कुछ नया कुछ चेंज करो क्योंकि हमको भी संकल्प आता है कि हाँ ये तो जरूर है, सबका अधिकार है, तो ये जो सिस्टम बनाए कुछ चेंज तो होना चाहिए, सभी आगे बैठे सभी नहीं होना चाहिए। तो वो अभी प्रैक्टिकल में हम कोरोना के कारण अनुभव कर रहे हैं। तो जितने भी मेले थे वो भी सब बंद हो गए, इस साल जो शिव जयंती की नवरात्रि की जो मेले लगते थे वो भी सभी बंद, रावण दहन भी कैंसिल हो गया, तो वो भी माना भीड़ कम हो गई। नहीं, रावण इस साल मरा नहीं, मतलब ज्यादा फोर्स करेगा, है ना, ज्यादा विकार माना परीक्षाएं सामने आएगी। तो ये एक ड्रामा अनुसार ये जो कंट्रोल किया है, तो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है कौन, कोरोना, लेकिन पूरा विश्व को कंट्रोल कर दिया। तो इससे हम सबक ले सकते कि हम आत्मा तो इतनी बिंदी है, ज्योति बिंदु, सारे माना कल्प के जो पार्ट को जानने वाली, आदि मध्य अंत को राज के जानने वाली, तो हम क्या नहीं कर सकते, हम छोटे भी आत्मा सारे विश्व को वाइब्रेशन देकर माना सदगति को ला सकते। तो हमारे अंदर भी कोई अपने को भी कम नहीं समझना है कि हम भी विशेष आत्मा है। हाँ, हम भी कम नहीं तो हम पॉजिटिव। हाँ, तो ये है संगम का जो कुंभ मेला, माना अभी कुंभ मेला या परमात्म मिलन मेला, ये पांचवी विशेषता है। फिर पद्मा पदम भाग्यशाली बनने की विशेषता, संगम युग को प्राप्त है, हर कदम में पदम प्राप्त है, जितना याद करते हैं उतना पदम प्राप्त होता है। तो अमृत वेले से रात तक जितने हमारे कदम पड़ते हैं तो कितनी कमाई जमा होती होगी, पद्मा पदम ना, लेकिन कंडीशन है कि याद उतनी रहनी चाहिए, हर कदम में याद रहनी चाहिए, तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते। और संगम युग पर हमें कितने भाग्य प्राप्त होते हैं, तन का भाग्य, मन का भाग्य, जन का भाग्य, धन का भाग्य। तन का भाग्य माना यह सेवा ही ईश्वरीय सेवा में लगा देते हैं, तो ये बहुत बड़ा भाग्य है। तो इस तन को भी हमें संभाल करनी है, 84वां लास्ट शरीर है, तो इसको भी संभाल भी बहुत करना बहुत जरूरी हो जाता है। जो भी विधियां है वैसे निरंतर याद अगर जुड़ी रहती है बाबदादा से तो कोई प्राणायाम की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन करना पड़ता है प्राणायाम योग जो भी है शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। तो ये तन का भाग्य। फिर मन का भाग्य, मन को मनमना भाव कर देते हैं, मन को एक बाबा की याद में लगा देते हैं, मन को टिका देते हैं, तो ये मन का भाग्य, मन मना व्यर्थ सोच नहीं सकता, इतना ये भाग्य प्राप्त हुआ है संगम युग में। फिर धन का भाग्य, तो धन का भाग्य जैसे हम ज्ञान धन बांटते हैं तो खुशी होती है, प्रत्यक्ष फल तो मिल ही जाता है, ज्ञान धन मिल ही जाता है, लेकिन ज्ञान धन जितना भी बांटते हैं बाबा ने कहा कि वो बढ़ते ही जाता है, कम नहीं होता। तो और दूसरा है कि ज्ञान धन बांटने से स्थूल धन भी आपे ही प्राप्त हो जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो ये धन का भाग्य। हाँ तो सभी ज्ञान धन बांटने वाले कुबेर हो गए आज के मुरली के अनुसार, तो सभी कुबेर बाबा के बच्चे। और फिर है जन का भाग्य, तो जन का भाग्य में सभी ब्राह्मण परिवार मिल जाता है हमें, तो ब्राह्मण परिवार का जो सहयोग मिलता है, सहयोग प्राप्त होता है, उससे हम आत्माएं सशक्त बन जाती है, एक दो को ऊंचा उठाने की प्रेरणा मिलती है और हम ऊंचे उठ जाते हैं। तो ये भाग्यवान बनने की, पद्मा पदम भाग्यवान बनने की जो विशेषता संगमी को प्राप्त है। फिर है सातवां, संगम युग है मौजों का युग। हाँ, इस संगम युग में मौज ही मौज है, सवेरे से लेकर रात तक उठो तो भी बाप के साथ मौज के साथ, हाँ? पढ़ो तो भी बाप के साथ, और खाओ तो भी बाप के साथ, पियो तो भी बाप के साथ, सो तो भी बाप के साथ, तो हर पल बाबा के साथ ही साथ है, तो मौज ही मौज है, क्योंकि ये मौज दूसरे युग में नहीं मिलती, अतीन्द्रिय सुख इसी युग में प्राप्त होता है। तो ये मौज का जो युग है विशेष युग है, तो ये विशेषता भी अभी प्राप्त होती है। श्रृंगार धारण करने की विशेषता इस संगमयुग को प्राप्त है। आठवीं पॉइंट श्रृंगार। श्रृंगार माना जैसे अलंकार कहेंगे तो हाँ, तो ये ताज तिलक जो भी 16 श्रृंगार बताए उनमें भी सो मोहित मुख्य है पवित्रता का श्रृंगार। तो पवित्रता का श्रृंगार खास इस संगम पर ही धारण करते हैं। पतित से पावन इसी संगम पर ही बनते हैं। तो पवित्रता का जो श्रृंगार धारण करने के लिए तीन विशेष बातें बाबा दादा ने बताई है मुरली में, कि दृष्टि की स्वच्छता, वृत्ति की स्वच्छता और एक स्मृति की स्वच्छता। ये तीनों की स्वच्छता जरूरी है। तो स्मृति में मैं पवित्रता के सागर बाप की संतान हूं, और वृत्ति में एक बाबा दूसरा न कोई, और दृष्टि में भाई भाई की दृष्टि। तो अगर ये पक्की है धारणा तो पवित्रता का श्रृंगार सहज ही धारण हो जाता है। तो ये पवित्रता की जो खास गिफ्ट हमें संगमयुग पर प्राप्त होती है। तो ये होगी विशेषता। फिर है बेगमपुर के बादशाह बनने की विशेषता। संगमयुग पर ही हम बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो गम अर्थात दुख, दुख का कोई नाम निशान नहीं। हम ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा सुख मिलता है, क्योंकि बाप दादा ने बताया कि पौना हिस्सा तो सुख ही होता है, फिर कुछ ही जन्म होते थोड़ा सा हिसाब किताब होता है वो चुक तो करते, बाकी ज्यादा सबसे ज्यादा सुख हम ब्राह्मण आत्माएं भोगती है। तो ये संगम पर ही प्राप्त होता है और ये बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो ये हैं विशेषताएं। फिर चार कंबाइंड स्वरूप की विशेषता संगम पर ही प्राप्त हो जाती है। तो चार कंबाइंड स्वरूप कौन से? हाँ, आत्मा और शरीर का ये कंबाइंड स्वरूप अभी संगम पर ही हमें प्राप्त होता है, क्योंकि पहले तो पता ही नहीं था। आत्मा सो परमात्मा ही कह देते थे, और शरीर का अलग है और आत्मा अलग है ये नहीं था। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तभी हम जानते कि आत्मा और शरीर, आत्मा का बाप अलग और शरीर का बाप अलग, ये हमें प्राप्त पता चला, तीन बाप का परिचय। तो ये पहला है शरीर और आत्मा। फिर दूसरा है ब्राह्मण सो फरिश्ता, ब्राह्मण ही हम फरिश्ता बनते हैं, ये दूसरी विशेषता थी। और तीसरा है आत्मा सो परमात्मा कहो या आप सो बाप, कंबाइंड स्वरूप का जो अनुभव करते हैं हम परम धाम में। तो ये तीसरा स्वरूप और तीसरा कंबाइंड स्वरूप। और चौथा है विष्णु चतुर्भुज। विष्णु चतुर्भुज माना लक्ष्मी और नारायण, ये यादगार है ना चतुर्भुज का। तो सतयुग में भी कभी नारायण बनेंगे कभी लक्ष्मी बनेंगे। हाँ, लेकिन वो गिनती में नहीं है रावण वाला। तो ये चार मुख्य कंबाइंड स्वरूप का अनुभव ये संगम पर ही हम विशेष अनुभव करते हैं। और पुण्य का खाता, फिर अगली पॉइंट है पुण्य का खाता जमा करने की बैंक संगम पर ही खुलती है। तो यहाँ जो भी कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो वो पुण्य कर्म में गिना जाता है और पुण्य कर्म का खाता जमा होता है। और सभी जो खजाने हैं ज्ञान गुण शक्तियां इसी पुरुषोत्तम संगम पर जमा होती है। तो जमा करने का युग अभी का है संगम। बाकी समय, बाकी के जो युग थे, जो द्वापर कलयुग, ये तो खाली करने, खजाने खाली करने के युग थे। सत्ययुग में तो प्रारब्ध पा रहे थे, वहां तो जमा की बात ही नहीं। जमा अभी करने का युग है। तो अभी हम जमा का खाता बढ़ा रहे हैं, पुण्य का खाता, दुआओं का खाता। तो जो भी खाता है, जो पूंजी जमा पूंजी अभी इस संगम पर ही हम प्राप्त करते हैं। फिर अगले पॉइंट है बाप से सर्व संबंधों का अनुभव। सर्व संबंधों का अनुभव इसी संगम पर करते हैं। तो बाप, टीचर, सदगुरु, ये तीन हो गए। और माता का संबंध, सखा का संबंध, भाई का संबंध और अष्ट संबंध जो गए हैं, साजन का संबंध, बच्चा, शिव बाबा मेरा बच्चा है, तो ये अष्ट संबंधों का अनुभव अभी हम करते हैं। तो हाँ, ये धर्मराज का संबंध का अनुभव होता ही है वो तो ऑटोमेटिक भी होता है तो ये संबंधों का अभी हम अनुभव कर सकते हैं। फिर असंभव को संभव करने की विशेषता इस संगम युग पर ही प्राप्त होती है। हाँ, आज का स्लोगन है, तो ये वरदान अभी प्राप्त होता है। यहां हर कार्य, जो कितना भी मुश्किल कार्य हो, कठिन कार्य हो, संभव हो जाता है, क्योंकि संगम युग को वरदान ही प्राप्त है संभव होने का। तो जो भी कोई छोटा मोटा इन्वेंशन भी करते हैं तो वो भी सब सफल हो जाते हैं। हाँ, संभवामी युग। तो जैसे कहा जाता है कि जो साइंटिस्ट लोग इन्वेंशन करते हैं, वो कोई भी सामग्री बनाते, उनको टचिंग होती है और वो जुड़ जाते हैं, उनको प्रेरणा आती है कि ऐसा ऐसा बनाओ, और उसमें कुछ गलतियां भी हो जाती है, लेकिन वो गलतियों से ही दूसरा कुछ नया इन्वेंशन बन जाता है। होती गलतियां हैं तो नए प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो जैसे हीलियम का अलग एटम बम बनता है, तो हाइड्रोजन बम, लेजर बम अलग अलग बन जाते हैं। जैसे आइसक्रीम भी, एक जगह हमने पढ़ा था आइसक्रीम कैसे बनी, तो आइसक्रीम ऐसे ही दूध को फ्रिज में रखते, शक्कर के साथ जम गई, आइसक्रीम बनी, और उसमें कुछ मिला दिया तो उसके फ्लेवर बन गए। तो फिर अभी हम देखते कि अलग अलग फ्लेवर में आइसक्रीम निकलती है, तो थोड़ा किसी ने ऐसा इन्वेंशन नहीं किया, लेकिन ऐसे हो गया, ऑटोमेटिक हो जाता है तो ऐसा ये संगमी को वरदान है, कुछ थोड़ा भी कार्य कर देते वो सफल हो ही जाता है। तो सिर्फ वो थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाने की देरी होती है कि नहीं करना ही है, थोड़ा अपने अंदर वो जिज्ञासा प्राप्त करने की ललक चाहिए थी। हाँ, तो ग्रेविटी का खोज ऐसा ही हुआ न्यूटन के द्वारा। तो ये विशेषताओं से भरा पड़ा है संगमयु, तो अनेक विशेषताएं हैं। फिर अगली विशेषता है राजस्व अश्वमेध, जो अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना संगम पर ही होती है। तो ये अश्वमेध, जो घोड़ा अश्व माना, ये शरीर है घोड़ा, इसको यज्ञ में स्वाहा करते हैं हम, तो ये सभी उसके साथ ही सारे विश्व की आहुति भी इस यज्ञ में पड़ती है, सारे दुनिया इस यज्ञ में स्वाहा हो जाती है। तो ये इस विशेषता संगमी को प्राप्त है इस यज्ञ की स्थापना की। और संगम पर ही सभी धर्मों की आत्माएं इस समय उपस्थित होती है, जितने भी धर्म है, तो परमधाम इस समय खाली हो जाता है, सभी आत्माएं तो परमधाम की सभी आत्माएं यहां आ जाती है, चाहे कोई भी धर्म की। तो धर्म पिताएं भी यहां आकर बाबा से शक्तियां प्राप्त करते हैं। हाँ, और बेहद का बर्थ कंट्रोल भी, अगली पॉइंट है ये, बेहद का बर्थ कंट्रोल इसी संगम पर ही होता है। फैमिली प्लानिंग को या जनसंख्या नियंत्रण इसी संगम पर ही बाबा आके हमें कराते हैं, संगम युग को ये वरदान है, विशेषता है। हाँ, तो सभी आत्माएं उपस्थित होगी ना, लेकिन अभी बाबा कंट्रोलिंग पावर दे देते कि सारी दुनिया का ही विनाश करा देते, तो पूरा कंट्रोल। 9 लाख आत्माएं सतयुग में आती है, कहां अभी 800 करोड़ और कहां 9 लाख, तो कितना कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये बाबा खास संगम की विशेषता बताते हैं। फिर है माया रावण पर विजय, इसी संगम पर होती है। जो दशे माया रावण माना जो माया के जो विकार है, जितने भी विकार है वैसे, हाँ तो सभी मनोविकारों पर विशेष जीत अभी संगम पर ही होती है। रावण को भी 10 चीज दिखाते हैं, माना 5 स्त्री के विकार, 5 पुरुष के विकार। तो इसके यह ही रावण जो यादगार है, अभी तक ही मरा नहीं है, हर साल जलाते ही है, हाँ बढ़ ही रहा है। तो इसको अभी संगम युग पर ही इस पर विजय प्राप्त कर दी, इस राम के द्वारा, निराकार राम के द्वारा रावण पर विजय, और हम ब्राह्मण बच्चों के द्वारा रावण पर विजय संगम पर ही होती है। हाँ, और फिर अगली विशेषता है देवासुर संग्राम, संगम पर ही होता है। देवासुर संग्राम मतलब देव और असुर, सद्गुण और अवगुण का जो लड़ाई है अभी ही होती है। तो देव बनने वाली हम आत्माएं हैं, और असुर माना आसुरी गुण है, इस पर हमें विजय प्राप्त करते हैं। तो सच्चा सच्चा देवासुर संग्राम अभी संगम पर ही चलता है। फिर महाभारी महाभारत की लड़ाई संगम युग पर ही चलती है। तो जैसे शास्त्रों में वर्णन है कि महाभारत कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था ना, तो कुरुक्षेत्र माना ये सारी दुनिया ही है। बाबा ने अभी ये रहस्य खोला कि जो सारी धरती कुरुक्षेत्र है, और भगवान धरा पर आ चुके हैं, और वो अभी हमें सम्मुख ज्ञान दे रहे हैं। और हमें बाबा जैसे पांडव कहते हैं ना, पांडव सेना और कौरव सेना, तो पांडव सेना को विजय प्राप्त हुई थी। तो अभी सच्चा सच्चा महाभारत हो रहा है। तो स्थूल महाभारत तो हो ही रहा है, वो चलते ही रहेगा, और लेकिन ये अभी प्रैक्टिकल में हम पांडव का प्रीत बुद्धि जो पांडव कहे गए तो परमात्मा से मिलन हो रहा है। तो ये सच्ची यादगार, तो ये सच्चा सच्चा महाभारत अभी संगम पर ही होता है। संगम पर ही मधुबन भूमि को सच्चे तीर्थ का दर्जा प्राप्त होता है। मधुबन महान तीर्थ, वैसे भक्ति मार्ग के तीर्थ तो चारों धाम गाए हुए ही हैं, और जो भी यादगार तीर्थ हैं पर चारों दिशाओं में, तो क्या दसों दिशाओं में ही तीर्थ है भक्ति मार्ग में, लेकिन बाबा ने अभी संगम युग पर खास तीर्थ बनाया मधुबन को, और ये ब्राह्मणों का खास स्पेशल तीर्थ है। हाँ, यही से सबको पासपोर्ट मिलता है रामधाम जाने का। तो ये विशेष तीर्थ है, यहाँ सभी पंडे होते हैं। पंडे माना रास्ता दिखाने वाले, मुक्ति और जीवन मुक्ति का, गति और सदगति का, सुखधाम और परमधाम का रास्ता। तो ये सच्चा सच्चा तीर्थस्थान है। तो तीर्थस्थान का दर्जा भी इस मधुबन भूमि को प्राप्त होता है। सभी शास्त्रों का सार संगम युग पर ही प्राप्त होता है। जितने भी वेद पुराण, बाइबल, कुरान और उपनिषद है, गीता भागवत, सभी शास्त्रों का सत्य रहस्य, सत्य सार अभी इसी संगम पर ही प्राप्त होता है। फिर है सभी त्योहारों का रहस्य, सभी त्योहारों का रहस्य इसी संगम पर ही खुलता है। हम तो मनाते थे दिवाली, तो हर साल मनाते, लेकिन दिवाली यही मनाते थे कि राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, उसके उपलक्ष्य में हम मनाते हैं। तो कौन सा राम था? निराकार राम ने विकारों पर जो विजय दिलाई थी, तो उसकी यादगार में ये दिवाली मनाई जाती है। फिर कारोनेशन डे लक्ष्मी नारायण का, उसके रूप में ये दिवाली मनाई जाती है। हाँ, दीपमाला, वही जो अयोध्या जब पहुंचे थे वापस रावण पर विजय प्राप्त करके राम, तो उसके उपलक्ष्य में भी दिवाली मनाई जाती। हाँ, तो ये है, हम आत्मा रूपी जो परवाने हैं समा पर फिदा हो जाते हैं, तो उसकी यादगार भी है दिवाली है, रोशनी का यादगार दिवाली है। तो दिवाली, तो ये रहस्य अभी संगम पर ही खुलते हैं। तो जितने भी, जैसे राखी का भी त्यौहार है, तो राखी का त्यौहार पवित्रता की निशानी, बाबा पवित्रता की राखी बांधते हैं, तो ये राज अभी संगम पर खुलते हैं। भक्ति मार्ग में तो वो धागा के द्वारा ही हम बांधते कि बहन भाई का पावन त्यौहार है, यही मानते थे, लेकिन जब राज खुलता है अभी संगम पर, सत्य रहस्य त्यौहारों के जो सत्य रहस्य अभी संगम पर ही खुलते हैं। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन, ये जो राज है अभी संगम पर ही खुलता है। तो ब्रह्म की रात सो ब्राह्मणों की रात, ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन, तो इसमें आधा कल्प दिन सत्युग त्रेता और आधा कल्प की रात द्वापर कलयुग, तो ये संगम पर ही यह राज खुलता है। भाग्य बांटने की विशेषता संगम को ही प्राप्त है, जैसे बाबा ने भी आज की मुरली में कहा है, बख्शीस देते हैं ना, हाँ बख्शीस देते हैं, या कुछ कपड़े बांटते हैं, कंबल बांटते हैं पुण्य जमा करने के लिए, तो माना बांटने का जो रसम है, जैसे गर्मी के दिनों में प्याऊ चलाते हैं, पानी बांटते हैं ना, तो ये बांटते, लेकिन इससे तृप्त नहीं होती आत्मा, अल्पकाल का खुशी मिलती है बांटने वालों को भी और प्राप्त करने वालों को भी, अल्पकाल होता है, लेकिन बाबा ने कहा कि शांति बांटना, हाँ शांति का दान देना, शांति का दान करना सबसे बड़ा दान है। और दूसरा है भाग्य बांटना, भाग्य बांटना माना पूरा जीवन ही भाग्यवान बना देना, तो ये भाग्य बांटना का जो विशेषता है संगम पर ही प्राप्त होती है। फिर दूसरी विशेषता है साइंस और साइलेंस का जो संगम है, इसी संगम ही ऊपर होता है, साइंस और साइलेंस। हाँ, तो साइंस द्वारा विनाश होता है, और साइंस द्वारा विनाश होता है, साइलेंस द्वारा स्थापना होती है, तो स्थापना और विनाश का कार्य संगम पर ही होता है। फिर अगली पॉइंट है, संगम पर ही ब्राह्मण सो फरिश्ता बनते हैं, क्योंकि बाकी जो धर्म है उसमें बताया गया है कि संगम की विशेषता, तो संगम ही आत्मा, संगम पर ही आत्मा पतित से पावन बनती है, यह विशेष आत्मा है, विशेष माना विशेष विशेषता है संगम की, कि यहीं पर आत्मा पतित से पावन बनती है। फिर कर्म अकर्म और विकर्म की गति का ज्ञान यही संगम पर ही प्राप्त होता है। फिर अगली पॉइंट है, संगम पर ही सम्मुख और संगम पर ही सुख और दुख का अनुभव प्राप्त होता है, संगम पर ही दुख और सुख का अनुभव होता है। संगम पर ही 84 जन्मों का पाठ खुलता है और पूरा होता है, पूरा भी होता है और पहला जन्म भी प्राप्त होता है, साथ साथ नया जन्म, हाँ दिव्य जन्म संगम पर ही प्राप्त होता है, हाँ द्विज कहा जाता है, मर्जीवा जन्म। फिर अगली पॉइंट है, शिव बाबा की याद से विकर्म विनाश होते हैं संगम पर, ये विशेष है, ये विकर्म जो भी रहे हुए 63 जन्मों के सब याद से नष्ट हो जाते हैं। हाँ हाँ, धर्मराज की जो सजाएं भी संगम पर ही प्राप्त होती। फिर अगली पॉइंट है,
संगम पर ही भगवान पंडा बनकर आते हैं पंडा बनकर आते हाँ सही रास्ता दिखाते हैं हाँ परम धाम का रास्ता बताते हैं। हाँ फिर 38 पॉइंट है, हो गया पूरा हो गया। संगम पर ही तीन बाप होते हैं, संगम पर ही तीन बाप होते हैं, बाकी युग में दो होते। हाँ दो, हाँ हाँ सतयुग में एक ही बाप, भक्ति में दो बाप, परमात्मा बाप और लौकिक बाप, और संगम पर लौकिक अलौकिक पारलौकिक तीन बाप संगम पर ही प्राप्त होते। संगम पर ही सारे विश्व में एक ही बार क्या होता है, थर्ड संडे का योग चलता है, इंटरनेशनल योग, क्योंकि और कोई कल्प में ऐसा नहीं होगा कि एक ही समय पर इतना सारे विश्व में योग होता होगा, वो भी कंटिन्यू 24 घंटा, क्योंकि अभी भारत में 6:30 बजे है तो दूसरी देश में अलग, तो ये हर घंटे में योग चलते ही रहता है, निरंतर योग। हाँ तो सारा ही अमृत वेला है, सारा युग ही अमृत वेला है। हाँ तो ये एक विशेषता है संगम युग को कि योग में निरंतर रहते हैं 24 घंटा, और संगम पर ही आत्मा का तीसरा नेत्र खुलता है, ये तीसरा नेत्र बंद रहता है बाकी युगों में, माना द्वापर कल युग में, सतयुग में नहीं खुला रहता है, आत्मा समझते हैं ना देवता है। हाँ थोड़ा समझे, हाँ हाँ लेकिन संगम पर तीसरा नेत्र खुलने से त्रिनेत्री बन जाते हैं, हम तीनों काल, हाँ त्रिकालदर्शी बन जाते हैं संगम पर ही, तो तीनों लोकों का ज्ञान त्रिलोकीनाथ बन जाते हैं, मास्टर त्रिलोकीनाथ। तो यही विशेषता है संगम पर ही आत्मा बाप समान बनती है, माना बाप बाबा के जो गुण है वो आत्मा में आ जाते हैं इसी संगम युग पर। और सुखधाम और परमधाम का रास्ता भी संगम पर ही प्राप्त होता है। तो ये इस ये जो निकाली हुई थी कुछ विशेषताएं, ऐसी संगम की विशेषताएं तो अनेक है, हाँ इतना वेद का परिवार ब्राह्मण परिवार मिलता है, हाँ हाँ संगम योग की विशेष विशेषता है कि ब्रह्मा भोजन प्राप्त होता है, और ब्रह्मा भोजन को भी देवताएं तरसते हैं। हाँ तो ये भी विशेषता संगम युग को विशेष प्राप्त है, और कौन सी है, हाँ संगम की विशेषता है, हाँ संगम सभी सभी विशेषताओं में विशेष, चाहे अदर कुमार हो चाहे कुमार हो, सब एक ही क्वालिटी में होती है, ब्रह्म कुमार और ब्रह्मा कुमार, तो ये विशेष ब्रह्मा बाप के बच्चे, हाँ तो ये विशेषताओं से भरा है संगम, अनेक विशेषताएं हैं जो कुछ ही विशेषताएं हमने निकाली है। हाँ 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 तो गीता पाठशाला की विशेषता संगम पर ही खुलती है, तो ये अनेक विशेषताओं से भरा पड़ा है, तो इन्हीं विशेषताओं को अगर हम स्मृति में रखते हैं तो हम विशेष आत्मा बन जाते हैं। अच्छा ओम शांति।